दानियल अध्याय पांच। बाइबल में से दानियल की पुस्तक अध्याय पांच निकालें। दानियल अध्याय पांच पद एक। बेलशज़र नामक राजा ने अपने हजार प्रधानों के लिए बड़ी जेवनार की और उन हजार लोगों के सामने दाख मधु पिया। जैसे मैं पहले कह चुका हूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बाइबल के विद्वान कहते हैं और हायर क्रिटिसिज्म उच्च आलोचना नामक स्कूल से संबंध रखते हैं। वर्षों पहले इन लोगों ने घोषणा कर दी थी कि दानियल की पुस्तक अवैध है। इस घोषणा का एक कारण था कि संसारिक इतिहास में उन्हें बेलशज़र नाम नहीं मिला। जहां तक मुझे ध्यान है, एक प्राचीन इतिहासकार नियो बोनोदिस ने नेबुकदनेज़र की वंशावली दी थी जिसमें बेलशज़र का जिक्र नहीं था। अतः प्रत्यक्ष है कि इतिहासकार तो गलत हो नहीं सकता, इसलिए बाइबल को गलत कह दे। यही कारण था कि उन्होंने दानियल को इस पुस्तक का लेखक होना स्वीकार नहीं किया। एक महान पुरातत्ववेता सर रॉलिंसन बाबुल में शूशन के महल की खुदाई का काम कर रहे थे। खुदाई में उन्होंने कुछ बहुत ही रोचक पट्टियां पाई थी जिनमें बेलशज़र का नाम था। वहां और भी ऐसी बहुत सी बातें पाई गई जो दानियल की पुस्तक में है। इस पर आप सोचते होंगे कि आलोचक चुप हो गए। नहीं, उन्होंने इसकी जगह कोई दूसरी बात पकड़ ली, परंतु एक बार फिर पुरातत्व वेताओं के फवाड़ों ने परमेश्वर के सत्य को और परमेश्वर की विश्वास योग्यता को प्रमाणित कर ही दिया है। ये बड़े दुख की बात है कि मनुष्य सदा इस आशा में प्रयासरत रहता है कि एक न एक दिन उसे बाइबल की भूल मिल ही जाएगी और वो प्रशंसा का पात्र अवश्य बनेगा। आज आप सोचेंगे कि अब तक तो समय बहुत हो चुका है और उन्हें पाव रखने को कुछ न कुछ तो मिल ही गया होगा, या आप सोचेंगे कि समझदारी इसी में है कि वे पीछे हट जाएं। बेलशज़र का विवरण बहुत रोचक है। बेलशज़र असल में नेबुकदनेज़र का बेटा नहीं था। उनकी भाषा में पोते के लिए कोई शब्द नहीं था, इसलिए यहां बेटा शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात वो उसी वंश का था। वो असल में नेबुकदनेज़र का पोता था। वो अपने पिता के साथ सहयोगी शासक था। दूसरे इतिहासकारों के अनुसार उसका पिता युद्ध में बाबुल की सेना की अगुवाई करता था, जबकि बेलशज़र महल में रहकर बाबुल पर शासन करता था। उसका पिता अपने बेटे के साथ शासन तो करता था, परंतु अधिकांश समय अपनी सेना के साथ युद्ध जीतने और लूटने में लगा रहता था। यही कारण था कि जब दीवार पर हाथ से लिखने की घटना घटी और दानियल को उसका अर्थ बताने के लिए वहां लाया गया, तब उसने दानियल को राज्य का तीसरा हिस्सा इनाम में देने की पेशकश की थी, क्योंकि वहां पहले ही दो हिस्से थे, एक उसका और एक उसके पिता का था। इसलिए दानियल को तीसरा हिस्सा मिल सकता था। बेलशज़र राजा ने अपने हजार प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया। उसने उन हजार लोगों के सामने दाख मधु पिया। अतः यहां एक बड़ी पार्टी थी जिसे कई घंटों चलना था। जोसेफस ने इसका विवरण लिखा है, जो इतिहासकार हेरोडोटस की तरह कुछ रोचक जानकारी देता है। इस पार्टी के बारे में कहा गया है कि शुतुरमुर्ग में वे फल और व्यंजनों की ट्रॉली खींच रहे थे और ये बड़ी पार्टी थी। दरअसल वे ये भी बताते हैं कि धूप बत्ती का सुगंधित धुआं उस कक्ष में इतना गाढ़ा था कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से अंदर आता तो खांसने लगता था। जिनोफोन भी इसका उल्लेख करता है। दानियल अध्याय 5:2-6 दाख मधु पीते पीते बेलशजर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नेबुकदनेज़र ने, जो शायद उसका दादा था, यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें ले आओ कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पीने लगा। वे दाखमधु पी पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवार के सामने राज मंदिर के भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वो मन ही मन घबरा गया, और उसकी कटी के जोड़ ढीले पड़ गए, और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। ये सारी घटना का काफी सचित्र विवरण है। उसके मन में घबराहट शुरू हो गई, और जरूर उसके मन में घबराहट होगी, क्योंकि उसने वे पात्र लिए थे जो मंदिर में केवल परमेश्वर के उपयोग के लिए पवित्र या शुद्ध किए गए थे, और उसने उन्हें अपवित्र किया, और न केवल उनमें शराब पीकर उन्हें अशुद्ध किया, बल्कि उसने सोने चांदी के देवताओं की स्तुति भी आरंभ कर दी। यशाया अध्याय 21 में एक बहुत ही दिलचस्प भविष्यवाणी है। भविष्यद्वक्ता कहता है, यशाया अध्याय 21:2-5, हे एलाम चढ़ाई कर, हे मादे घेर ले, उसका कराना मैं बंद करता हूं, इस कारण मेरी कटी में कठिन पीड़ा है, मुझको मानो जचा की पीड़ाएं हो रही है, मैं ऐसे संकट में पड़ गया हूं कि कुछ सुनाई नहीं देता, मैं ऐसे घबरा गया हूं कि कुछ दिखाई नहीं देता, मेरा हृदय धड़कता है, मैं अत्यंत भयभीत हूं, जिस सांझ की मैं बाट जोता था उसे उसने मेरी तरतराहट का कारण कर दिया है। और वे आगे कहता है, यशाया अध्याय 21:9, गिर पड़ा बाबुल गिर पड़ा, और उसके देवताओं की सब खुदी हुई मूर्तें भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई है। ये वो भविष्यवाणी है जो कई सौ साल पहले बाबुल के विरुद्ध की गई थी कि बाबुल गिर पड़ा है। यही घटना अब घट रही है जिसका जिक्र दानियल करता है। मेरा हृदय धड़कता है, मैं अत्यंत भयभीत हूं, जिस सांझ की मैं बाट जोता था उसे उसने मेरी थरथराहट का कारण कर दिया है। और हां, यही वो रात है जब बाबुल गिरा। मादी फारसी राजा कुसरू ने आकर उसे जीत लिया था। यहां एक और रोचक भविष्यवाणी है जो यशिया भविष्यद्वक्ता द्वारा की गई थी। उसने कहा था कि बाबुल कुसरू के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। यशाया अध्याय 44:28 में कुसरू के विषय में लिखा है, वो मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है, वो बसाई जाएगी और मंदिर के विषय की तेरी नेव डाली जाएगी। यहोवा अपने अभिषिक्त कुसरू के विषय यूं कहता है, मैंने उसके दैने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। इसलिए आप यहां पढ़ते हैं कि उसकी कमर के जोड़े ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। ये भविष्यवाणी 200 साल पहले की है। मैं राजाओं की कमर ढीली करूं और उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। वो आगे कहता है, जिससे तू जाने कि मैं इसराइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इसराइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। अब यशिया ने इसे लगभग 712 ईसा पूर्व लिखा था। हम वो बातें पढ़ रहे हैं जो लगभग 538 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। अतः इस घटना से 150 साल पहले परमेश्वर ने राजाओं की कमर को ढीली करने और उनके सामने फाटकों को खोलने के बारे में कहा था। बाबुल शहर पूरी तरह से अजय समझा जाता था। उसकी दीवार करीब 300 फुट ऊंची, 80 फुट चौड़ी थी और उनके ऊपर बड़ी बड़ी मीनारें थी। इसके शहर पना के साथ एक और दीवार थी जो इसके जैसी बड़ी नहीं थी। बाबुल शहर के बीच में फरात नदी बहती थी। शहर के चारों ओर 15 मील तक दीवार थी और शहर पूर्व से पश्चिम तक बसा था और सड़कें चौड़ी थी और पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। जहां जहां ये सड़कें फरात नदी पर से गुजरती थी, वहां वहां पुल बने थे। वहां नदी के गेट भी थे जिन्हें बंद करने से फरात नदी का पानी रुक जाता था और शहर दो भागों में बट जाता था। इतिहासकारों के अनुसार जिस रात बाबुल गिरा, जिसके बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ रहे हैं, उस रात सिपाहियों ने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि वे फरात नदी के गेटों को बंद करना भूल गए। मादी फारीसी सेना के राजा कुसरू ने परिस्थिति का लाभ उठाकर फरात नदी का रुख मोड़ दिया। नशे में बेसुध होने के कारण सिपाही अपने बचाव ना कर सके। अतः इसे दानियल द्वारा विस्तार से बताया है, बल्कि उस राजा का नाम भी बताया गया है जिसके द्वारा परमेश्वर की बातें पूरी हो रही थी और उसने यहां तक बताया कि उसकी कमर कांपने लगी। अर्थात बेलशज़र ने जब परमेश्वर का हाथ देखा तो उस पर बड़ा भय छा गया। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके काम परमेश्वर का खुल्लम खुला उपहास करते हैं। वे परमेश्वर का तिरस्कार, उपहास और निंदा करने में बहुत आगे रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनके दिलों में परमेश्वर का भय है ही नहीं। लज्जा नाम की चीज को तो वे जानते ही नहीं हैं। सोचिए कि ये मनुष्य उन बर्तनों को मांगता है जो परमेश्वर के मंदिर के उपयोग के लिए पवित्र किए गए थे और फिर वह इन बर्तनों में शराब पी रहा है और सोने चांदी के देवताओं की आराधना कर रहा है। उसी समय वो परमेश्वर के हाथ को देखता है और ये राजा जो बहुत निर्लज और निंदा करने वाला दिखाई दे रहा था, अचानक से पत्ते की तरह कांपने लगता है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने कामों में जो निर्लज और निंदा करने वाले होते हैं और जब वे परमेश्वर के हाथों दंड को आते देखते हैं, तब परमेश्वर उन्हें एक कांपते हुए सूखे पत्ते की तरह बना देता है। जो कड़ा बोलते हैं, जो परमेश्वर के निंदक दिखाई देते हैं, परमेश्वर अपना काम शुरू करता है। तब मैं आपको जता दूं कि कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये राजा भी कांपने लगा, उसके विचार उससे परेशान करने लगे। दानियल अध्याय 5:7। तब राजा ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बाबुल के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वो लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही राज्य करेगा। उसका पिता पहला था और वो दूसरा था और अब वो तीसरे शासक को आमंत्रित कर रहा था। दानियल अध्याय 5:8-16। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए परंतु उस लिखे हुए को ना पढ़ सके और ना राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा निपट घबरा गया और भयोत्तर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी राजमाता जेवनार के घर में आई और कहने लगी, हे राजा तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई है। और हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तांत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल को बुलाया जाए और वो उसका अर्थ बताएगा। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबुकदनेज़र राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तांत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि ये लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताए, परंतु वे उस बात का अर्थ ना समझ सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता और संदेह दूर कर सकता है, इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके तो मुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। देखिए दानियल की प्रतिष्ठा कैसी महान है। उसमें पवित्र परमेश्वर का आत्मा था, उत्तम बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ मनुष्य। दानियल अध्याय 5:17। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता है वे दूसरे को दे। वो लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। परमेश्वर के वरदान को खरीदा नहीं जा सकता। परमेश्वर की सेवकाई के लिए किसी मनुष्य को किराए पर रखना या परमेश्वर के काम को करने के लिए किराया वसूल करना उचित नहीं। यीशु ने किराए के टट्टुओं के बारे में कहा था, किसी मनुष्य द्वारा परमेश्वर के वरदानों को बेचना अनुचित अभ्यास है। ये एक प्रकार का वेश्यावृत्ति है। इसलिए दानियल ने कहा, अपने दान अपने पास ही रख, उन्हें किसी दूसरे को दे दो, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मैं तुझे बताऊंगा कि ये क्या है, मैं तुम्हें इसका अर्थ समझाऊंगा। परंतु समझाने से पहले वो राजा को एक छोटा सा भाषण देता है। इस घटना के समय दानियल की आयु 90 साल के करीब रही होगी, क्योंकि 70 साल की गुलामी लगभग समाप्त हो चुकी थी, और जब उसको गुलाम बनाया गया था तब वो लगभग 15 या 17 साल का जवान लड़का था, और 70 साल बाद वो लगभग 85 से 90 साल के मध्य अवश्य हो गया होगा। और अब इस जवान राजा को एक कठोर उपदेश देने के अवसर का वो सदुपयोग करता है। दानियल अध्याय 5 पद 18 और 19। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेज़र को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वो चाहता उसे वो घात करता था। नबूकदनेज़र की असीम प्रभुता का वर्णन। दानियल अध्याय 5 पद 19 और 20। जिसको वो चाहता उसे वो जीवित रखता था, जिसे वो चाहता उसे वो ऊंचा पद देता था, और जिसको वो चाहता उसे वो गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहां तक कि वो अभिमान करने लगा, तब वो अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। स्वर्ग के पहरेदारों ने उसे ये सब कुछ ले लिया था। दानियल अध्याय 5 पद 21 और 22। वो मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा, और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वो बैलों की नाई घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। तो भी हे बेलशज़र, तू जो उसका पुत्र है और ये सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ। अब बेलशज़र उन सब घटनाओं को जो उसके दादा के साथ घटी थी जानता था। वो उस घटना को भी जानता था कि कैसे 7 वर्ष तक उसका दादा पागल रहा, और फिर वापस आने के बाद कैसे उसके दादा ने ये घोषणा की थी कि दानियल का परमेश्वर की तरह पृथ्वी पर कोई परमेश्वर नहीं है। वो जिसे चाहता है उसे ऊंचा उठाता है, जिसे चाहता है नीचे गिरा देता है, और जिसे चाहता है उसी को अधिकारी ठहराता है। ये सारी बातें बेलशज़र अच्छी तरह से जानता था, और दानियल उसे याद दिला रहा है कि वो भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहा है। दानियल अध्याय 5 पद 23। वरन तू स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने धरवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाक मधु पिया, और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते ना सुनते ना कुछ जानते हैं उनकी तो स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। यहां पर मनुष्य के पाप का वर्णन किया गया है। वो लकड़ी, पत्थर, सोना, चांदी और पीतल के देवताओं की स्तुति कर रहा था, देवता जिन्हें उसने स्वयं के हाथों से बनाया था। वे देवता जो ना देख सकते थे और ना सुन सकते थे, ज्ञान शून्य, ज्ञान रहित छोटी मूर्तें, वे उनकी स्तुति कर रहा था। वो उस परमेश्वर की जिसके हाथ में उसकी हर एक सांस थी, निंदा कर रहा था। यहां एक बहुत रोचक बात है कि परमेश्वर के हाथ में हमारी सांस है। फेफड़े एक अनैच्छिक मांसपेशी है, इसलिए ये शरीर के कंकाल से जुड़े नहीं होते और आपको सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता। ये प्रक्रिया अपने आप होती रहती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते हैं जिसमें सांस लेने के लिए सोचने की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत दुखद स्थिति होती है, क्योंकि इसकी वजह से सोना दुर्लभ हो जाता है। सत्य तो यह है कि सोते समय भी उन्हें यह ध्यान रखना पड़ता है कि प्रति 30 सेकंड बाद उन्हें जागना है और सांस लेना है, फिर 30 सेकंड सोना है और फिर जागकर सांस लेना है। इस प्रकार ये एक भयंकर बीमारी होती है जिसमें श्वसन क्रिया मस्तिष्क के नियंत्रण में होती है। उन्हें सांस लेने के लिए सोचना होता है, परंतु आपको ऐसा नहीं करना पड़ता। इसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर सांसों को नियंत्रित करता है। ये रोचक बात है, परमेश्वर हृदय और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। परमेश्वर उन बातों को नियंत्रण करता है जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। परमेश्वर आपको अपने जीवन की अन्य अनेक बातें नियंत्रित करने देता है, परंतु वे बातें जो जीवन से संबंधित है उन्हें परमेश्वर अनैच्छिक प्रक्रिया के अधीन रखता है। इन्हें दिमाग नियंत्रित नहीं करता, परमेश्वर उन पर नियंत्रण रखता है। आपको अपने हृदय की धड़कन को बनाए रखने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपका हृदय अपने आप धड़कता रहता है। इसी प्रकार आपके फेफड़े भी सांस लेते रहते हैं और गुर्दे भी अपना काम करते रहते हैं। इस प्रकार की शारीरिक क्रिया जिनके ऊपर आपका जीवन निर्भर करता है, उन्हें परमेश्वर मस्तिष्क जैसे दुर्बल अंग के भरोसे नहीं छोड़ देता है। परमेश्वर जिसके हाथ में आपकी हरेक सांस है, आपकी बदबूदार सांस, आपने कभी किसी शराबी की सांस की गंध ली है? खट्टी महक, परमेश्वर जिसके हाथ में आपकी हरेक सांस है। एरियोपुगस, जिसके अंग्रेजी में मार्स हिल कहते हैं, पर प्रेरित पौलुस ने दार्शनिकों से बात करते समय कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं तुमसे इस अनजाने परमेश्वर के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि इसी में हम जीते हैं, इसी में हम चलते हैं और इसी में हमारा सब कुछ है। परमेश्वर हमारी समझ से ज्यादा हमारे करीब होता है, परंतु हमें परमेश्वर की सारी शक्ति को अर्जित करने और उसे चारों ओर फैलाने में और ज्यादा सचेत होने की जरूरत है। जैसे दाऊद ने कहा था, मैं तेरी उपस्थिति से भागकर कहां जा सकता हूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अधोलोक में जाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं पंख लगाकर पृथ्वी के छोर तक भी चला जाऊं तो तू वहां भी मेरे चारों तरफ होगा। वह दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में अत्यधिक सचेत रहता था। लोगों में ये एक भ्रम है कि परमेश्वर निर्धारित स्थान पर होता है, इसलिए उनके पास देवताओं के शहर है। वे सोचते हैं कि ये देवता इस शहर में रहता है और वो देवता उस शहर में रहता है। उन्होंने परमेश्वर को एक मूर्ति के रूप में बना दिया और उस मूर्ति की पूजा करने लगे। ये परमेश्वर को स्थानीय बताते थे कि वो परमेश्वर वहां है, चलो हम वहां चलें। परमेश्वर को किसी स्थान में आवासी बताना गलत है। परमेश्वर कभी एक स्थान में बंद हो ही नहीं सकता। कलीसिया में भी हम इस तरह के भ्रम में पड़ जाते हैं और परमेश्वर को कलीसिया में स्थानीय बना लेते हैं। हम हमेशा ये प्रार्थना करते हुए सुनते हैं, ओ परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए कि इस सुबह हम आपकी उपस्थिति में आपके सामने बैठ सके। मानो कि जब हम सोकर उठे थे या जब हम गाड़ी चलाकर चर्च आ रहे थे, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं थे और अंत में हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच गए। ओ, अब हमें शांत हो जाना चाहिए। आप जानते हैं, अब हमें सुधर जाना चाहिए और ठट्टा करना छोड़ देना चाहिए। हम में परमेश्वर को सीमित करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए हम इस सच्चाई के प्रति जागरूक नहीं होते कि हम जहां कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर हमारे साथ होता है। वो हमें सुनता है। जब हम सोचते हैं कि हम छिप रहे हैं, तब वो हमें देख रहा होता है। हम उन निंदकों की नाई हैं जो कहते हैं, भजन संहिता 73:11 पद, क्या परमेश्वर जानता है, क्या परमेश्वर देखता है? और हम सोचते हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर से छिपा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्थानीय है। अतः मैं सड़क पर जो दुष्ट कार्य करता हूं, परमेश्वर उसे नहीं जानता। जब मैं चर्च में जाऊंगा तो बुरे काम नहीं करूंगा। ध्यान रखें, परमेश्वर स्थान संबंधित नहीं है। जिस परमेश्वर के हाथों में उनकी सांसें थी, उसे छोड़कर वे उस ईश्वर की उपासना करते थे जिसके पास स्वयं सांस नहीं, दृष्टि नहीं, संवेदना नहीं, और जिस परमेश्वर के हाथों में उनकी सांस थी, उसकी वे उपासना नहीं करते थे। इस कारण दानियल अध्याय 5 पद 24 से लेकर 28 तक, तभी ये हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं, और जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तेकेल और उफारसीन। इस लेख का अर्थ ये है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल, तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परिस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। परमेश्वर की घोषणा है, तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है, अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। दानियल अध्याय 5 पद 29 और 30, तब बेलशज़र ने आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई, और ढिंडोरिये ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशज़र मार डाला गया, और दारा मादी, जो कोई 62 वर्ष का था, राज गद्दी पर विराजमान हुआ।